તારીખ 20/1/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 262.
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 493 ચલતા હૈ. जिसको आत्मज्ञान होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसको अपना स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और बाहर के विनाशी अथवा अन्य पदार्थ के संयोग में उसे ठीक अधिक पना नहीं होता. ये ठीक है, ये अठीक है, ऐसा लगता नहीं. इसलिए नहीं लगता, इस संयोग से अपना स्पष्ट भिन्नपना, अलगपना अनुभव गोचर रहता है. इसलिए इष्ट अनिष्टपना की कल्पना जो पहले बनती थी वो छूट जाती है. वास्तव में कोई संयोग ठीक भी नहीं है और अठीक भी नहीं है, ये एक आरोपित बात है. तो आत्मज्ञान होने से ये ठीक अठीकपना की कल्पना छूट जाती है. पर संयोग है, अन्य है, मेरा कोई वास्ता इससे नहीं है. और अपना स्वरूप जन्म जरा मरण रोगादि बाधा रहित, कैसा है अपना स्वरूप जो अनुभव में आया, वो कि जिसमें जन्म नहीं, मरण नहीं, वृद्धावस्था नहीं, रोग नहीं, कुछ किसी प्रकार की बाधा उसमें नहीं होती, वो अव्याबाध अनंत सुखधाम है. संपूर्ण महिमा करने योग्य ऐसा जिसका स्थान है, उसका अनुभव करके कृतार्थ हो जाता है कि मैंने जो कुछ करने लायक था वो कर लिया. कृतार्थ का मतलब वो है कि जो मेरा कर्तव्य है वो मेरा हो गया, अभी कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता. जो जो पुरुष ने, मैंने जो जो आत्मा ने इस छह पद स्वप्रमाण एवं परम पुरुष के वचन से आत्मा का निश्चय हुआ है, वो पुरुष वही आत्मा सर्व स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और आधि व्याधि उपाधि सर्व प्रकार से रहित हुए हैं, होते हैं और भविष्य काल में होंगे. मतलब तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में ये छह पद जो तीर्थंकर देव ने निरूपण किया है, परम पुरुष मैंने तीर्थंकर देव ने निरूपण किया है, उसी के अनुसार जिसको वैसा ही अपना स्वरूप का निश्चय होता है यानी अनुभव होता है, वो सर्व अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार को प्राप्त किया, उसको आदि व्याधि उपाधि सब मिट गई. किसी भी संसार के किसी भी प्रकार का दुख उसको होता नहीं, हो नहीं सकता. ऐसी एक निराकुल सुख शांति की अवस्था को जीव प्राप्त करता है. એક માણસ ઘણું કમાય क्या थोड़ी घणो व्याज के मजूरी चुकवी पड़े कोई ना કઈ ગણવા માં નથી આવતી. ઓવરઓલ ટોટલ નફો છે એ જ ગણાય છે. નેટ પ્રોફિટ બહુ મોટો લાભ છે. બસ ઇતના બરા લાભ હોય કે જિસકો સંસાર કા કોઈ દુઃખ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ છૂ નહીં સકતા, कहीं असमाधान होता नहीं, किसी भी प्रकार का टेंशन और तनाव में वो जीव नहीं आता. बनारसी दास जी ने गाया है कि जिसने मिथ्यात्व का निकंदन कर दिया है ऐसे जिनेश्वर के लघुनंदन, उनकी शांत दशा तिनकी पहचानी, करे कर जोड़ी बनारसी बंदन. तो ऐसे एक शांत दशा को जीव संसार की मध्य में दिखता हुआ भी अपनी शांत दशा में वो रहता है. अंदर से वो कभी विचलित नहीं होता, ऊपर ऊपर की विचलितता होती है, अंदर से विचलित नहीं होता. मेरू हिलो तो हिलो, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूँ.
इसलिए बहन से कहते हैं जो ब्रह्मा डली जाए.
अब नीचे चार सत्पुरुष की महिमा के नमस्कार वचन लिखे हैं. जो सत्पुरुषों ने यानी ज्ञानी पुरुषों ने जन्म जरा मरण को नाश करने वाला स्व स्वरूप में सहज स्थिर होने का उपदेश कहा है. स्व स्वरूप मैंने अपना अनंत शांत स्वरूप में स्थिर होने का उपदेश कहा है. यह सत्पुरुषों को, ऐसे सत्पुरुषों को अत्यंत भक्ति से नमस्कार है. उसकी निष्कारण करुणा को नित्य प्रति निरंतर स्तवन करने में भी आत्म स्वभाव प्रकट होता है. इस ज्ञानी पुरुषों को किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, कोई कारण नहीं है उपदेश देने का. अपना स्वयं का कोई कारण से उपदेश नहीं देते, निष्कारणता से उपदेश देते हैं. वो अपने सुख शांति के रास्ते पे चले जाते हैं और चलते चलते मार्ग दिखाते जाते हैं कि ये शांति का मार्ग है, हम ऐसे ही जा रहे हैं, जिसको आना है आ सकते हैं. ओपन फॉर ऑल, सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं. ना जात उम्र जाति का कुछ उसमें बाधा नहीं है. विश्व का कोई भी जीव आ सकता है. तो बिना मतलब ऐसी सुख शांति की जो स्थिति बनाने का उपाय मैं बताया, उसकी निष्कारण करुणा की प्रशंसा करने में, स्तवन करना मैंने प्रशंसा करने में, प्रशंसा करने वाले को दर्शन मौका अभाव हो जाएगा और आत्म स्वभाव आत्म साक्षात्कार प्रकट होगा. क्यों? कि जिसने दर्शन मोह को अभाव किया, दर्शन मोह से जो रहित हुए, उसका बहुमान करना, उसमें दर्शन मोह स्वयं गल जाता है और दर्शन मोह से रहित हो जाएगा।
नित्य प्रति लिखा है,
नित्य प्रति और निरंतर यानी सत्पुरुष की उतनी महिमा है कि एक दिन भी छूटे नहीं और कभी भी छूटे नहीं। वो कैसे होता है, एक परिणति हो जाती है। जैसे हम लोग हैं, अपना दृष्टांत ले लें कि पहले स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, वहां तक तो हमारी स्टूडेंट लाइफ थी। इसके बाद कमर्शियल फील्ड में जब आते हैं तब मालूम पड़ता है कि पैसा एक ऐसी चीज है कि सब चीज हम खरीद सकते हैं, हमारी जरूरत और हमारी लग्जरी सब कुछ इससे मिलता है, इज्जत भी मिलती है, वो भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। उसका बार बार विचार नहीं करना पड़ता, एक दफे मूल्यांकन आ जाता है कि ये चीज है, इसमें सब चीज समाविष्ट है।
कांचनम
सर्वे गुणा हा कांचन आश्रयति। संस्कृत जो इडियम है वो ऐसा है कि सर्वे गुणा हा कांचनम आश्रयति, सोना में सर्व गुणा जाता है। क्योंकि वो उसका पैसा इंटरनेशनल वैल्यू है, इसका कहीं भी जाओ पैसा मिल जाएगा। तो वो पढ़ाई का दिन तो पूरा हो गया, इस सब प्रकार के विकल्प छूट गए। अब विकल्प रूप में और निर्विकल्प रूप में एक परिणति बन जाती है, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार से करें इस प्रकार से नहीं, या ऐसा खर्च कर ले ऐसा करके ले वैसा करके। तो नित्य और निरंतर रहता है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि वो ऑफिस जाता है तभी उसका विचार करता है, घर आता है तो उससे इसका विचार चलता है, खाते खाते भी वही चलता है, और बिस्तर पे जाता है तो भी वही चलता है, चलता है या नहीं चलता है। तो जिसमें सुख और लाभ दिखा उसका नित्य और निरंतर चलने वाला है। ऐसे इस संसार के सभी प्रकार के दुख को छुड़ा करके आत्मा की अमृतमयी शांति जिस कारण से जिसकी वजह से मिलती है, इसका भी ऐसा ही महिमा, इसका इतना प्राधान्य मुमुक्षु के अंतर में एक दफे में जाता है। बाद में वो उसको स्वरूप अनुभव होता है। ऐसी एक वस्तु स्थिति है। तो इस तरह से जिसको हुआ उसको आत्म स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और जिसके कारण से ऐसा होता है ऐसे सर्व सत्पुरुष क्या लिया, ऐसा नहीं कहा कि एक का ही एक बात है दूसरे का कोई का बात है ही नहीं, इसका जो भी हुए हैं जैसे भी हुए हैं जितने भी हुए हैं सर्व सत्पुरुष इसके चरणारविंद सदाए हृदय में स्थापन रहो। खुद लिखते हैं कि ऐसे जितने भी सत्पुरुष हुए इनके चरणारविंद मेरे हृदय में स्थापित हो जाओ, और मुझे तो इतना बहुमान है इसके प्रति, सबों के प्रति मुझे इतना बहुमान है। पहला वचन हुआ। जो छह पद से सिद्ध है, सिद्ध है मैंने प्राप्त हुआ है, ऐसा आत्मस्वरूप वह जिसके वचन के अंगीकार करने से सहज में प्रकट होता है, किसके वचन में? सत्पुरुष के वचन से, क्योंकि सत्पुरुष ने निरूपण किया, तो उस वचन को सुनते हुए नहीं कहा, अंगीकार करते हुए धारण करना, जो उपदेश प्राप्त हुआ है उसको धारण करना, मैंने ग्रहण करना। सहज आत्म साक्षात्कार प्रकट होता है, और जो आत्म स्वरूप प्रकट होने से सर्वकाल जीव, हमेश के लिए जीव, अनंत काल के लिए संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर के निर्भय हो जाता है, फिर इसको कोई भय नहीं है। इसको मृत्यु का भय चला गया और किसका भय रहेगा, मेरी मृत्यु है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, कहीं भव भगवान्तर हुआ तो जहां भी रहना है आत्मा में रहना है, इधर भी एक क्षेत्र में अपन थोड़ी न रहते हैं, कभी कलकत्ता तो कभी कहीं, तो कभी कहीं आना जाना तो होता ही है, लेकिन हम राग द्वेष की कल्पना करके ये ठीक है वो ठीक नहीं है, कंपैरेटिवली ये बेटर है वो ठीक नहीं है, ऐसा करके हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो तनाव में आते हैं। ज्ञानी को क्या है, कहीं भी रहना है आत्मा में रहना है, मुझे मेरे ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वरूप में रहना है, कोई क्षेत्र से मेरा वास्ता
नहीं
है, न क्षेत्र से वास्ता है, न शरीर से भी, ये शरीर बदला जाएगा, कभी भी इसका वियोग होगा, नया आएगा, कोई भी हो इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो मेरे स्वरूप में हूँ, चाहे इधर हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे मनुष्य लोक में हो, चाहे कहीं भी हो,
सब भूमि गोपाल की,
मारे मारा आत्मा मारे मुझे, कोई क्षेत्र से मुझे राग द्वेष नहीं है, कोई शरीर से मुझे राग द्वेष नहीं है।
ऐसे बोला तो इजी से
બોલવામાં સહેલું છે, આપણને ગમતું હોય તો, અગર હમકો સ્વાતા હૈ તો હમ ઇસકો અંગીકાર ક્યો નહીં કરે, ઔર ઈશ્વરવશ હૈ પર બચતા હૈ અપના અનુભવ કરના, वो अपने बस की बात है, सही बात मानने में, परिणमन करने में हमको रोकने वाले कौन, किसी की पहुंच नहीं के हमको अंदर में हमारे परिणाम को इधर से उधर कर दे, हमारे परिणाम को पकड़ करके कोई इधर से उधर कर दे वो बात तो ही नहीं, फिर क्या बात है। फलाना फलाना ऐसा शरीर वाला, ऐसा कुटुंब वाला, ऐसा संयोग वाला, ये निश्चय कर रखा है, मान रखा है, फिर हमारे सभी परिणाम उसी को बेस बना करके फिर चलने वाले, उसी के मुताबिक चलेंगे। जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप एक आत्मा है, शरीर तो कभी आता है कभी जाता है, प्रत्यक्ष छुटता हुआ देखने में आता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं मैं, तो फिर मुझे दूसरे पदार्थ से रिश्ता निष्ठ ठीक ठीक बनने का क्या जरूरत है, कौन सी आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो आत्मस्वरूप का अनुभव होने से सर्वकाल जीव संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर के निर्भय होता है, यह वचन के कहने वाले ऐसे सत्पुरुष के गुण की व्याख्या उन्हें कथन करना कि मेरी अशक्ति है, उसका जो महिमा है वो भी वचनातीत है। जिसके वचन से इतना फायदा होता है उसके आत्मा की क्या कहे, इसके महिमा हम कर सकते नहीं है। स्वरूप से थोड़ा खिसक करके बोलने का राग आता है, बोलने का भाव राग भाव, वो तो स्वरूप में लीन होने से तो आता नहीं, यहां से खिसकने से आता है। और वो राग पूर्वक वचन व्यवहार चलता है, रागी नहीं हो तो वचन भी नहीं, छद्मस्थ अवस्था में तो बात है। वचन तो राग का निमित्त से राग के फल स्वरूप हुआ, तीर्थंकर को है तो भी पूर्व के राग के कारण से है, वर्तमान वितरकता से कारण, वितरकता के कारण से धीरे धीरे नहीं छूटती। हाँ, तो भूतकाल के राग का फल है वह, वर्तमान वितरकता का फल पुद्गल में आता ही नहीं, वितरकता का फल तो आत्मा में परमानंद का है, और वो तो उसी वक्त है, उसमें भविष्य की कोई बात नहीं है। तो भविष्य का भूतकाल का कर्म फल भविष्य में आया है, तीर्वी स्थान में वो उदय आया है। तो वाणी है वो भी एक राग का फल स्वरूप है, वो वाणी में ऐसा निमित्त तत्व है क्या कि जिससे दूसरे का आत्मस्वभाव प्रकट हो जाए और वो संपूर्ण आनंद में वो विराजमान हो जाए। तो जिसके राग और वचन में उतना निमित्तत्व है उसके आत्मा के गुणों की बात क्या करें। क्यों? क्योंकि जिसके प्रत्युपकार न हो सके, जिसका प्रत्युपकार मैंने सामने से उपकार नहीं कर सकते, ऐसा परमात्मा भाव, वह जिसने कुछ भी चाहे बिना मात्र निष्कारण करुणाशीलता से दिया, अपेक्षा नहीं रखे, आप सुखी हो जाओ, हमको इसमें कोई मतलब तो नहीं है, फिर भी आप सुखी हो जाओ, ऐसा क्या कहा, ऐसा परमात्मा भाव कुछ भी चाहे बिना मात्र निष्कारण करुणाशीलता से बताया, ऐसा नहीं कहा, दिया, करुणाशीलता थी आयतो, परमात्मा भाव आयतो एम के
तो
प्रभु आप प्रभु देव का एक विशेषता वो है कि जब वो कोई सत्पुरुष के शिष्य होकर के बात करते हैं तो बिल्कुल शिष्य बन करके ही बात करते, क्योंकि उसने अपना भूतकाल याद आता है, मेरे भी एक सदगुरु थे जिसने मुझे मेरा आत्मा का प्रदान किया था, पर न मेरी क्या हालत होती कह नहीं सकते। संसार के अनंत दुख भोगने से जिसको बचाया और अनंत सुख की प्राप्ति का रास्ता दे दिया, ऐसे कोई डूबता है, बचने का कोई आसार नहीं दिखता, एक परसेंट भी बचने की कोई जगह नहीं है। ऐसे समुद्र के मध्य में कोई डूबता है, उनको कोई हाथ पकड़ करके खींच लेता है, नाव में बिठा देता है, तो उसकी शक्ल देखे बिना वो कहेगा कि मैं कोई भगवान पुरुष है। फिर आपकी शक्ल दिखाई, आप कैसे हैं, ऐसा तर्क भी उसको नहीं उठेगा कि कोई बचा सकते नहीं थे, कोई नहीं। अगर किसी ने मुझे बताया तो मेरे भगवान है, ये भाव सहज आएगा। ये तो सजीवन मूर्ति हित होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो लोग पत्थर को भी पूजते हैं।
आप एक काम कर दीजिए,
ये घटना घटी थी, आबू का शिविर अपन किया ना डेढ़ साल पहले, तो आगरा से आ रहे थे वो नितिन वगैरह, आबू बस में आ रहे थे, वो एक बस और उसकी बस और एक ट्रक आमने सामने भिड़ गई, बचने की कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन कोई कुदरती व्यवस्था ऐसी हुई कि बीच में कोई इतना बड़ा पत्थर था कि जिससे वो ट्रक पत्थर से टकरा गई और ये बस वाले बच गए सब। बहुत बड़ा धमाका हुआ, सबको तो श्वास अधर हो गया, क्या हो गया। फिर देखा कि हम बच गए हैं, तो नीचे उतर करके देखे कैसे बचे, ये तो आमने सामने हो जाते हैं, तो बीच में एक इतना बड़ा पत्थर आया कि सब बच गए, क्योंकि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है। भगवान क्या लोग बोलने लगे, ये पत्थर नहीं है, ये तो भगवान है, ले जाओ उसको मंदिर बनाओ उसका, इसको यहाँ से ले जा करके इसको मंदिर में स्थापन करो। तो जो मृत्यु से बचता है उसको ही ये मृत्यु से बचना क्या चीज है उसका अनुभव उसको होता है, दूसरे को नहीं होता। तो भगवान क्या चीज है उसका ज्ञान उसको होता है कि भगवान क्या चीज होती है।
हम लोग तो भगवान को मानता तो नहीं,
किसको,
हम लोग भगवान को मानता नहीं।
हाँ वैसे वो तो एक दृष्टांत है, सिद्धांत वो है कि जिस सत्पुरुष के वचन से, जिस वचन को अंगीकार करते हैं, और अंगीकार करने की परिस्थिति नहीं थी, वो परिस्थिति में लाकर के अंगीकार करवाया जिसने, और संसार की सभी विटंबना से बचाया, उनके प्रति वो सत्पुरुष मनुष्य नहीं है, भगवान है, ऐसा भाव आए बिना नहीं रहेगा। वो सत्पुरुष उसकी नजर में भगवान के रूप में देखेगा, ऐसे जिसने परमात्म भाव दिया फिर भी जिसने अन्य जीव में यह मेरा शिष्य है, अथवा मेरी भक्ति को करता है इसलिए मेरा भक्त है, ऐसा कभी देखा नहीं। उसने तो सबको एक ही दृष्टि से देखा, किसी में भेद नहीं छाटा, मेरी भक्ति करता है इसलिए मेरा भक्त है, दूसरा तो मेरे सामने नहीं देखता इसलिए मेरे भक्त कहाँ है, ऐसी दृष्टि किसने कभी राग द्वेष की, जिसको इस तरह से सब पुरुष के निमित्तत्व को और उसकी वितरागता को बहुत बहुमान किया है। इधर कृपाल देव के वचन में इतनी बात आई है, लिखावट में, कथन में क्या क्या बोलते होंगे और ज्ञान में कितना भरा होगा, क्योंकि जो जो बात ज्ञान में आती है वो मन की सीमा में नहीं आती, विकल्प में नहीं आती, और जो विकल्प में आती है उतनी बोलने में नहीं आती, और जो बोलने में आती है उतनी लिखने में नहीं आती। तो लिखने में इतना आया तो ज्ञान में कितना होगा,
अनुभव में कितना,
हाँ अनुभव ज्ञान है कितना होगा, अंदाज लगाना चाहिए। इसलिए इस ग्रंथ में थाम थाम उसी बात को पॉइंट आउट करते हैं, वो जो हमने हृदय में सर्वाधिक रूप से जो बात फील हुई है, लगी है, उसको किसी न किसी तरीके से वो पॉइंट आउट करते हैं। एक बात फाइनल है कि किसी भी संसारी जीव को इसके सवा बचने का निस्तार नहीं है, एक भी जीव को। जब भी उनको सत्पुरुष मिलेंगे, इसके प्रति सही महिमा आएगी, तभी इसका कल्याण होगा। इसके सिवा किसी का हुआ हो होगा वो बात कभी बनने वाली
नहीं।
इसलिए इसका महत्व अपने निर्वाण दर्शन में तो एक प्रकरण पूरा लिखा है कि मुमुक्षु की भूमिका में प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग होता है तो इसकी महिमा, इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है, वो घटना के बिना कभी किसी का मोक्ष मार्ग मिला हो, किसी को आत्महित हुआ हो, किसी को सुख शांति हुई हो, ये कभी बना नहीं, बनने वाला भी जो सत्पुरुषों ने सद्गुरु की भक्ति निरूपण की है, यह भक्ति मात्र शिष्य के कल्याण के वास्ते कही है, खुद को कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं है। तो वो तो अपने को असंग तत्व के रूप में देखते हैं, खुद ही अपने को असंग के रूप में देखते हैं। वो असंगता वैसी है कि कोई उसकी भक्ति करता है, पूजा करता है, तो अनुभव तो वो करता है कि मुझे कि मेरे को तो कुछ छूता नहीं, मैं तो वैसा का वैसा असंग ही रहता हूं, इससे को मुझे तो लाभ होने वाला है नहीं। जो कुछ वो करता है अपने आप में करता है, मेरे को कुछ संबंधी नहीं होता। तो फिर भी उन्होंने ये बात कही कि ऐसे किसी भी शिष्य को अपने सदगुरु की यथार्थ भक्ति पहचान पूर्वक आती है तो वो उसको कल्याण का कारण बनती है। जिस दर्शन को अनंत काल में जीव ने दर्शन मोह को हटाया नहीं और दर्शन मोह ने जीव को दुख देने में बाकी रखा नहीं, ऐसा एक प्रबल दुश्मन जो है उनको सहज मात्र में हटाने का ये साधन बन जाता है दर्शन मोह। यहां से यथार्थ रूप से जिसकी पहचान होने से भागने लगता है, भयने लगता है कि अब उसको मृत्यु अपनी देखती दिखती है, दर्शन मोह को अपनी मृत्यु दिखती है। ऐसा साधन सत्पुरुष की उपकार बुद्धि वाली भक्ति में ऐसा साधन है बड़ा। जो भक्ति प्राप्त होने से यानी पहचान पूर्वक की भक्ति है, सदगुरु के आत्मा की चेष्टा में वृत्ति रहती है, सदगुरु का आत्मा में अपना स्वयं का आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ का की जो चेष्टा है वो इनको देखती है कि अरे ये तो हर हालत में वही काम करते हैं, उनको इसकी इतनी बड़ी महिमा आती है कि उसकी वृत्ति वहां ही रहती है, वही उसको दिखाता है। वृत्ति आप ठीक है कि भाई अनुजीव आया चाहे दोष अनुजीव आया वही दोष खरेखर तो मैं वृत्ति वर्गी से शू है પણ આપણે એમ નહીં છે ભાઈ આખો જીવન ત્યાં છે, એનો જીવનમાં છે, કોઈને કોઈના પ્રત્યે અતિશય વાત હોય તો આપણે એમ નથી કહેતા કે ઉસકા જીવમાં ચોંટ ગયા હૈ, વાત તો વૃત્તિ ઉસકી હૈ। એસે સત્પુરુષ કે આત્મા કી ચેષ્ટા મેં જિસકી વૃત્તિ રહેતી હૈ, અપૂર્વ ગુણ સદગુરુ કે અપૂર્વ ગુણ દ્રષ્ટિ ગોચર હોકર કે होने से अन्य स्वच्छंद मिट जाता है, सर्व स्वच्छंद मिट जाता है, उतना नम्रीभूत हो जाता है, उतनी महानता गुरु की लगती है कि मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, मेरे को ये सब बाकी है, मेरा ये सब बाकी है, कहीं भी उसको अहंकार अभिमान आएगा नहीं। और सहज आत्मबोध होता है ऐसा जान करके, जो भक्ति का निरूपण किया है उस भक्ति को और उस सत्पुरुष को बार बार त्रिकाल नमस्कार। तो सत्पुरुष को तो नमस्कार किया लेकिन सत्पुरुष की भक्ति करने वाले को भी नमस्कार किया है। ऐसे अगर किसी को भक्ति होती है तो हमको तो उसकी भी भक्ति होती है। भक्तिमान की भक्ति,
भक्तिमान
वो कभी अभिमान अहंकार पैदा नहीं होने देगा। इस तरह से सत्पुरुष और सत्पुरुष की भक्ति करने वाले को भी भगवान से नमस्कार। ये तीन नमस्कार वचन हुए हैं, आठवां दस से बंद करें तो एक महीने से गांगुली नहीं आते। काले चलो वतनामृत कर ले।